गिरिवरधारी पिजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन शोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी वनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय राधा बन बिहारी राधा बन बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन ललिता देवी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शिष्य मद भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शिष्य मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय हो वृंदावन धाम की जय हो मायापुर धाम की जय हो जगन्नाथ क्षेत्रपुरी धाम की जय हो नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो तुलसी देवी वृंदे देवी महा की जय हो ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक 37 चारों कुमारों से महाराज पृथु की भेंट तत्त्वं नरेन्द्र जगतामत्तस्तु शाम च देहेन्द्रियासुधिषणात्मभिरावृतानां यः क्षेत्रवित्तपतयारदि विश्वगाविः प्रत्यक्षकास्ति भगवान् स्तमवेहि सोऽस्मि तत्त्वं नरेन्द्र जगतामत्तस्तु शाम च देहेन्द्रियासुधिषणात्मभिरावृतानां यः क्षेत्रवित्तपतयारदि विश्वगाविः प्रत्यक्षकास्ति भगवान् स्तमवेहि सोऽस्मि तत्त्वं नरेन्द्र जगता मत्तस्तुषां च देहेन्द्रियासु धिषणात्मभिरावृतानां यक्षेत्रवित्तपतयारदिविश्वगाभिः प्रत्यक्षकास्ति भगवान् स्तमवेहि सोऽस्मि रूपांतर ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट तत् अतः त्वं तुम नर इंद्र हे श्रेष्ठ राजन जगताम चरों का अतः इसलिए तस्तुषाम अचर च भी देह शरीर इंद्रिय इंद्रिया असु प्राण घीषणा दीश सॉरी दीषणा विचार से आत्म भी आत्म साक्षात्कार से आवृतानाम इस प्रकार से आच्छादित लोगों का यह जो क्षेत्रविद क्षेत्र का ज्ञाता तपतया वश में करके हृदि हृदय में विश्वक हर जगह आवि अभिव्यक्त प्रत्येक प्रत्येक रोमकूप में चकास्ती चमकता हुआ भगवान श्री भगवान तम उनको अवेही जानने का प्रयास करो सह अस्मि मैं वह हूँ रूपांतर एवं तात्पर्य शिला भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद द्वारा सनत कुमार ने राजा को उपदेश दिया अतः हे राजा पृथु उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का प्रयास करो जो प्रत्येक हृदय में प्रत्येक जीव के साथ निवास कर रहे हैं चाहे वह चर हो या अचर प्रत्येक जीव स्थूल भौतिक शरीर से तथा प्राण एवं बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर से पूर्णतया आवृत है तात्पर्य इस श्लोक में विशेष रूप से यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य जीवन में आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करने तथा इंद्र तृप्ति में समय गंवाने की अपेक्षा मनुष्य को चाहिए कि वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझते हुए आध्यात्मिक गुणों के अनुशीलन का प्रयत्न करे जो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है व्यक्तिगत आत्मा तथा परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ये दोनों इस शरीर में बैठे हुए हैं जो स्थिल तथा सूक्ष्म तत्वों से ढका रहता है इसे समझ लेना ही वास्तविकता आध्यात्मिक संस्कृति पाना है आध्यात्मिक संस्कृति में प्रगति करने की दो विधियां हैं एक तो निर्विशेषवादियों की विधि तथा दूसरी भक्ति निर्विशेषवादी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह तथा परमात्मा एक है किंतु भक्त तथा सगुणवादी परम सत्य का साक्षात्कार यह समझकर करता है कि प्रभु परम नियंता है हम जीवात्मा उन्हीं के अधीन है और हमारा धर्म यह है कि हम उनकी सेवा करें वैदिक आदेश है तत्वमसी तुम वही हो तथा सो हम मैं वही हूँ इन मंत्रों की निर्विशेषवादी व्याख्या यह है कि परमेश्वर या परम सत्य तथा जीवात्मा एक है किंतु भक्तों के मत ये मंत्र इस पर बल देते हैं कि परमेश्वर तथा हम सभी समान गुण वाले हैं तत्वमसी अयम आत्मा ब्रह्म परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही आत्मा हैं इनको समझना ही आत्मा साक्षात्कार है। यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमेश्वर तथा अपने को जानने हेतु है। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्त में ही अपने अमूल्य जीवन को विनष्ट ना करे। तात्पर्य और ज्यादा है, हम यहीं पर उसका कहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं नम्रता पूर्वक सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ श्रीमद् भागवतम के इस प्रवचन में। तो इस श्लोक में चारों कुमार महाराज पृथु से जो चर्चा करते हैं उसमें तीन मुद्दे महत्व के हैं। एक तो आत्मा और परमात्मा जो शरीर के अंदर है, भौतिक स्थूल शरीर। दूसरा निर्विशेषवादियों का जो मानसिकता, और तीसरा है कि भक्त जो है उसकी मानसिकता क्या है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी आज चर्चा करें। हम जब मेडिकल कॉलेज में थे तो हमारे साथ एक डॉक्टर हुआ करते थे, उसको हम डॉक्टर नाडू बोलते थे। नाडकर्णी उनका नाम था, तो प्रेम से हम नाडू बोलते थे। तो जब वो जो डॉक्टर नाडू जो थे वो बहुत फिजिकल एक्टिविटी में बहुत मचे रहते हैं, शरीर के लिए रोज एक्सरसाइज जिम बहुत बिजी रहने के बावजूद भी वो हमेशा जिम करके शरीर को बहुत ही मजबूत बना के उन्होंने रखा था। और वो हमेशा कहते थे कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो जब उनको बेटा हुआ तब उसने सभी को मिठाइयाँ बांटी और जोर से कहते हैं मुझे औलाद नहीं हुई है फौलाद हुई है। सो बेटा नहीं हुआ, फौलाद मजबूत हुआ है। तो क्या उसका मतलब हम ऐसा ले लें कि चलो उसको अभी बाप खुद कह रहा है फौलाद हुई है, सो हम ऐसा मान लें कि उसको फौलाद हुई थी। फौलाद यानी ना स्टिल स्ट्रांग नहीं, पिता खुद कह रहे थे, लेकिन यह एक उदाहरण था कि मेरा बेटा इतना स्ट्रांग हुआ है कि वो एक फौलाद के समान है। लेकिन अगर हम उसको समझ ले कि इसको जो बेटा हुआ है वो फौलाद ही है, तो ये हमारी जो है जो थोड़ी जो बुद्धि की जो है वो क्षमता की कमी पना दिखाता है। उसी प्रकार से हम जब कभी कोई बहुत विशाल हृदय की व्यक्ति होती है और हम कहते हैं कि इसके अंदर हृदय नहीं है लेकिन समुद्र भरा हुआ है या तो आसमान है, तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि उसके हृदय में खालीपन है आसमान है। नहीं, उसकी हृदय की विशालता इतनी है कि एक आसमान के समान या एक पर्वत के समान है। सो कई बार आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने की अलग अलग प्रकार की जो स्थिति उसमें होती है उसमें कई बार जो साधक जो होते हैं, अलग प्रकार के साधक एक होता है वर्ग जो शब्दशः प्रमाण ले लेते हैं और उसके पीछे का हार्द जो है वो नहीं समझते हैं। और इसी की वजह से तत्वमसी या तुम वही हो या सोहम मैं वही हूँ, सो जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा से थोड़ा सा विभिन्न जो होता है वह व्यक्ति जो है इस प्रकार की मानसिकता से वो शब्दशः उस व्यक्ति को उस शब्द को समझने की को लेता है कि मैं ही वही हूँ या तुम भी वही हो। यह जो है निर्विशेषवाद का यह एक
मुख्य एक प्रमाण रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि निर्विशेषवाद जो होता है ये एक पर्टिकुलर एक सेक्ट है, लेकिन अगर सच में अगर हम देखा जाए तो ये जो सारी जो भौतिक जो जगत जो है उसका जो डेफिनेशन जो है, निर्विशेष का डेफिनेशन क्या है? निर्विशेष का डेफिनेशन वह है जो जो व्यक्ति या जो मानसिकता जो विचारधारा आत्मा और परमात्मा से विभिन्न है, यह जो है जो निर्विशेष को बताता है। और लेकिन निर्विशेषवाद जो है उसकी दो यही मानसिकता का जो मुख्य हार जो है एलिनिएशन, सच्चाई से जो है वो दूर हो गया होता है। और जब यह सच्चाई से दूर होने की जो मानसिकता होती है उसका ये कैरेक्टर होता है कि जो किसी अपने से कोई जो नीचा है वो उसे वो ऑप्रेस या तो दबाने की कोशिश करता है, अपने से कोई ऊपर है ऊंचा है तो उसकी ओर ईर्ष्या रखता है, और अपने सरीखा कोई होगा इक्वल होगा तो उसकी व्यक्ति की उसकी ओर अभिमान या तो फिर मैंने क्या पाया है उसका प्राइड अभिमान होता है। तो ये जो है निर्विशेषवादी जो भावना है ये सारे भौतिकतावादी समाज की ये संज्ञा है, ये कोई एक सेक्ट या नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति शरीर को ही सब कुछ मानता है और शरीर और इंद्रिय को अपने स्वार्थ के लिए अपने पर्पस के लिए उसका फायदा कैसे लेना और उसके आजू बाजू में जो भी कोई चीज जुड़ी हुई है उसका किस प्रकार से फायदा उठाना है, ये इम्पर्सनल माइंडसेट का कैरेक्टर है। और यही माइंडसेट जो होता है वह हर एक को यूटिलाइज करना, चाहे मेरे शरीर के साथ जो भी चीज जुड़ा हुआ हो, यहां तक कि सो कॉल्ड अध्यात्म में भी आध्यात्मिकता में भी उनके साथ जो भी चीज जुड़ी है उसका फायदा उठाना। शिला प्रभुपाद जापान के वो जो एक पब्लिशर थे उसका उदाहरण देते हैं कि उसके एक मैनेजर को पूछते हैं कि आपका जीवन का ध्येय क्या है, तो अपना विजिटिंग कार्ड जो सबसे नीचे है उसे निकाल के वो टॉप में रखता है। यह निर्विशेषवाद का एसेंस है कि आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी मुझे जो है वो टॉप में जाना है, और टॉप में जाते समय अगर टॉप के साथ में अगर नहीं मैं बन सकता हूं तो टॉप और मैं हम एक ही हैं। कई जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डिवोटीज रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है और वो बताते हैं कि यही इम्पर्सनलिज्म एलिनिएशन भगवान से आत्मा और परमात्मा से जो दूरी जो होती है वही मानसिकता भौतिक जगत में हर कई क्षेत्र में आज फैली हुई है। आप देखिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, हर चीज में, खेलकूद देखिए, पढ़ाई देखिए, मेडिकल फील्ड में देखिए, हर चीज में यह मानसिकता जो है आत्मा और परमात्मा से दूर होने के वजह से हर चीज का फायदा कैसे उठाना, ये यहां तक कि सोशल लाइफ में भी गृहस्थ जीवन में भी यही मानसिकता जो है वो आजकल फैली हुई है। हमारे मेडिकल फील्ड की तो बात ही क्या करें, हम प्रभु जी यहां बैठे हैं, एक ऑर्थोपेडिक की सीट 10 साल पहले कितने में बिकी जाती थी? 4 करोड़ रुपया। सोचिए कोई व्यक्ति के पास अगर 4 करोड़ रहेगा तो आराम से अपना जीवन सादाई से भक्ति से जी सकता है, कोई उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो भी चीज मेरे पास है उसका उपभोग सर्वोत्तम तरीके से करना, ये मानसिकता है। अगर मेरे पास 4 करोड़ रुपया है तो उस 4 करोड़ रुपये का मैं ऑर्थोपेडिक सीट लेकर उससे बाद में मैं सौ करोड़ में उसमें से मैं बनाऊं। और यही मानसिकता एजुकेशन के साथ में दिखाई देती है। आज क्लासेस देखो, ट्यूशन क्लासेस देखो, कितने हम हर जगह पर, यह महीना जुलाई महीना होता है, जून जुलाई महीना होता है, तभी यहाँ से हमरापुर से बाहर आते मैंने एक क्लासेस का वो देखा, 600 में से 490 मार्क, एनईटी में फर्स्ट, एनईटी में सेकंड, हर जगह पे, हर बम्बई में बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं जून जुलाई के समय, क्योंकि अब जो है एडमिशन का समय आया है, एडमिशन के हम एक दो बच्चे के हमारे मार्क लगाकर आप जो है और बच्चे मेरे पास आएंगे, हमारी फीस और बढ़ाएंगे। और एजुकेशन में इस प्रकार से पहले जो गुरुकुल जो निस्वार्थ भाव से जो मेडिकल जो वैदिक जो विज्ञान जो होता था, वह यह एलिनिएशन के वजह से, भगवान आत्मा और परमात्मा के दूर होने के वजह से, यह जो है मैरिज में भी, शादी में भी आप देखेंगे कि सबसे सुंदर या सबसे पैसे वाला पति या पत्नी मुझे मिलना चाहिए। उसे मिलने के बाद में अगर लगा कि और भी कोई अच्छा, और भी कोई पैसे वाला, और भी कोई सुंदर व्यक्ति अगर मिलती है, तो जो भौतिकता की जो मानसिकता है, मेरे पास उपभोग के लिए जो है वो सर्वोत्तम होना चाहिए। और इसी के वजह से ये रिसर्च बताता है, ये डीओडी द्वारा ये रिसर्च करा गया था, ये बताया, यही मानसिकता बताती है कि हम बाद में एक व्यक्ति बदलते हैं, दूसरा व्यक्ति बदलते हैं। और इसी के वजह से एक पहले घर हो, फिर बाद में दो बेडरूम का हॉल हो, फिर बाद में एक वीकेंड होम होना चाहिए, एक गाड़ी होती है, फिर दो गाड़ी होती है, फिर थोड़ा लैंड हम ले लेते हैं, फिर और लैंड लेते हैं। तो इस प्रकार से जो भौतिकता की जो मानसिकता होती है ये बढ़ती जाती है। ये शास्त्रों में भी हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि शब्दशः किसी भी वचन को शास्त्र का ले लेना, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु श्रीपाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की, जब उन्होंने अपनी बाहरी लीला समाप्त की, तब उन्होंने कहा था कि मेरा शरीर, जब मेरी मृत्यु हो जाए तभी मेरा शरीर को मायापुर में पूरे पैर को बांधकर उसे घसीटना चाहिए। और जो बुद्धि में थोड़ी जो कमी है, ऐसे व्यक्ति ने इस शब्द को शब्दशः लिया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो प्योर वैष्णव थे, उन्होंने हार्द समझा। भक्त जो है वो हार्द के पीछे रहता है, शब्दशः समझना यह एक सच बात है, लेकिन उसके पीछे का जो हार्द है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज समझे। और उसी के वजह से ये जो बाद में हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे उन्होंने उस प्रकार की मानसिकता को उन्होंने दूर कर दिया। तो इस प्रकार से जो भक्त जो होता है वो इस भौतिकतावादी शरीर का जो अस्तित्व है उससे अपने आप को दूर समझता है। एक डिवोटीज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब एक छोटा सा पर्वत में से निकलता हुआ जो झरन होता है, झरना होता है पानी का, तो जो देखने वाला होता है उस पानी के प्रवाह को ही देखता है और उसे ही सच समझता है। लेकिन उस पानी का जो मूल जो है, वो छोटी सी जो नदी जो पर्वत से आ रही है, उसका मूल जो है, उसका उगम स्थान है पर्वत में, वहाँ पर जो जल का स्त्रोत्र है वह उसका उगम स्थान है। उसी प्रकार से हम शरीर को हम सब कुछ समझ बैठते हैं, लेकिन उसके अंदर आत्मा और परमात्मा है वह जो है वो जो सच्चा और उसका जो है उगम स्थान यह है। तो एक वैष्णव जो होते हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद आगे बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि कैसे यह आत्मा के साथ परमात्मा का जो साथ में जो रहना है उसका मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य यही है कि परमात्मा की हर क्षण ये इच्छा रहती है, ये पर्पज रहता है कि कभी ना कभी आत्मा जो है मेरी और हमारी और देखे और उसे जो है भक्ति में जो वापस जाने की शुरुआत हो। कई साल पहले की बात है, एक बार शिला प्रभुपाद मनीला में थे। कल हमारे काउंसिलर मीटिंग में बहुत सुंदर तरीके से ये बात के ऊपर हिज ग्रेस दयानिधि प्रभु ने चर्चा की कि पिछला प्रभुपाद मनीला में एयरपोर्ट में बैठे थे और सारे भक्त सामने खड़े थे और एक माता अपने छोटे बच्चे को लेकर खड़ी थी और ये छोटा बच्चा माँ के हाथ से फिसल के नीचे आ गया और एयरपोर्ट पूरा, हम जानते हैं एयरपोर्ट कितना चकाचौंध होता है, यू नो आज भी मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पर तो देख के आश्चर्य हो जाता है कि कितनी लाइट होता है, कितनी अलग अलग प्रकार की बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है, कहाँ पर कारीगरी होती है, कहाँ पर सुंदर पिक्चर्स होते हैं। तो एयरपोर्ट का जो सीन है वो पूरा ये भौतिक जगत का एक एसेंस है कि जो उसको हमको जो है भक्ति से दूर लेके जाने के लिए चकाचौंध करने की उसकी जो है मूल उद्देश्य होता है। तो ये छोटे बच्चा जो है धीरे धीरे आगे जाता है उस एयरपोर्ट को देखने के लिए, लेकिन जाते जाते पीछे माँ की ओर वो देखता है, माँ हंसती है, बच्चा हंसता है, बच्चा और आगे जाता है। थोड़ी देर जाने के बाद में माँ की ओर और देखता है, माँ और हंसती है, बच्चा और हंसता है और बच्चा आगे जाता है। अब बच्चे में थोड़ी हिम्मत आती है और उसको लगा कि ये भौतिक जो ये जो सुंदर जो एयरपोर्ट है उसे जरा एक्सप्लोर किया जाए। तो थोड़ा आगे जाते हैं और तब शिला प्रभुपाद उस माता को बुलाते हैं और अपने व्यासासन के पीछे छुपने को कह देते हैं। बच्चा थोड़ी और आगे जाता है, देखता है चकाचौन, लेकिन उतने में उसे माँ याद आती है, पीछे देखता है तो माँ नहीं है। अरे अब तक तो बच्चा पूरा आनंद से जा रहा था और उसने देखा माँ नहीं है, तुरंत वो रोने लगता है और फिर प्रभुपाद उसे बुलाते हैं बच्चे को। बच्चा धीरे 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 आता है और पीछे माँ को देखता है और तुरंत वो हंस लेते हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ये भौतिक जगत में हम आए हैं, हम हमारी भौतिक मानसिकता के साथ इस भौतिक जगत को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया परमात्मा जो हृदय में जो है और उसी परमात्मा का स्वरूप बाहरी रूप में श्री गुरुदेव के रूप में जो है, उसका मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि इस भौतिक जगत की जो चकाचौंधस है उससे दूर रहकर, भौतिक चकाचौंध में जब हम रहते हैं तब हम रियलिटी सच्चाई से हम दूर हो जाते हैं और जब सच्चाई से हम दूर होते हैं तब हमेशा हृदय में डर रहता है। मुझे अभी भी याद है जब परीक्षा की तैयारी नहीं रहती है, परीक्षा आने वाली है, ये सच्चाई को मैंने आँख बिचोली की होती है और अच्छी तरह से तैयार नहीं किया होता है तो हमेशा परीक्षा के पहले डर रहता है। तो डर जो है, ये भौतिक जगत में जो डर है, ये डर का मूल यह है कि हमने अपने आप को उस सच्चाई से दूर किया है कि भगवान के हम दास हैं और हम इस इल्यूजन में हम हैं कि भौतिक जगत में जो है मुझे ये आनंद मुझे मिलेगा। तो इस प्रकार से इस श्री जो गुरुदेव जो होते हैं ये हमारे आत्मा के परमात्मा के साथ का जो अंदर का जो हमारा जो स्वर परमात्मा जो हमारे साथ आए हैं जिस मूल उद्देश्य के साथ आए हैं उसी के जो बाहरी जो स्वरूप होते हैं जो है वो श्री गुरु होते हैं। और इसी के वजह से श्री गुरु से आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं क्योंकि वे आपके साथ सिर्फ इस शरीर के साथ नहीं है परमात्मा के रूप में, ये आपके साथ जन्मों जन्म से है। थोड़े साल पहले ही होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज को कोई शारीरिक कुछ तकलीफ थी तो डॉक्टर के रूप में मुझे बुलाया था और महाराज उसी दिन बाहर गांव जा रहे थे और बहुत लोग एज हम देखते हैं लास्ट दिन पे इतने सारे विजिटर्स मिलने आए थे। सवेरे से मैं रुका, भागवतम के बाद में मैं सोचा मिल लूँगा, लेकिन भागवतम के बाद में महाराज को मिलने के लिए लोग आ रहे थे, मैं रुका था। 11:30 बजे हिज ग्रेस माधवानंद प्रभु का फ़ोन आया कि गिरिराज प्रभु क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं रुका हूँ, महाराज अभी मुझे बुलाएंगे सेवा के लिए। तो माधवानंद प्रभु ने बहुत सुंदर एक वाक्य कहा, मैंने आज भी उसको हृदय में छुपा के रखा है, वो कहे कि इट इज द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून ऑफ अ डिसाइपल टू वेट फॉर स्पिरिचुअल मास्टर इन एंटिसिपेशन दैट स्पिरिचुअल मास्टर विल कॉल यू, है ना। भक्त का एक बड़ा भाग्य है कि वह अपने गुरुदेव अपने को बुलाएंगे सेवा के लिए, उस आशा के साथ वह हाँ वो रुका रहता है। सो ये भक्त का बहुत भाग्य है। सो टाइम चल रहा था, डिओटीज आ रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी, शाम हो गई, लेट इवनिंग हो गया, और लेट इवनिंग को आखिर में जब महाराज जब रेस्ट करने के लिए जा रहे थे, तब महाराज ने बुलाया मुझे, और तब गोविंद प्रभु और हिज ग्रेस गौरांग प्रभु एंड हिज ग्रेस गोविंद प्रभु भी आए, और महाराज जोर से हंसने लगे, और महाराज ने कहा गिरिराज प्रभु, गोविंद प्रभु, गौरांग प्रभु, आई केप्ट गिरिराज प्रभु इन ग्रेटेस्ट प्रेडिकामेंट, मैंने गिरिराज प्रभु को बहुत आज दुविधा में मैंने रख लिया। और फिर महाराज हंसने लगे, और फिर महाराज मुझे उनकी हृदय की विशालता है कि वो कहने लगे कि गिरिराज प्रभु प्लीज मुझे माफ करिए। सो पूरे दिन का वो जो मनन जो था उस समय शब्दों के द्वारा, महाराज ने ही वो शब्द मुझे मुख में रखे। मैंने कहा महाराज थोड़े समय के लिए मैं आपके लिए रुका, वो कौन सी बड़ी बात है, आप तो मेरे लिए कितने जन्मों से रुके हैं, एक परमात्मा के रूप में आप मेरे लिए कितने जन्मों से रुके हैं कि कभी ना कभी मैं जो है आपकी ओर मुड़ू और आप जो है मुझे भगवान की ओर दिशा में मुझे दिशा दे। तो इस प्रकार से परमात्मा जो होते हैं ये हर जीव के लिए उनका मुख्य उद्देश्य परमात्मा का जो होता है कि जीव जो है वो कभी ना कभी भगवान की ओर ले आए। हम ये देखते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद सबसे पहले श्रील प्रभुपाद एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके गुरु महाराज वह इटर्नल एसोसिएट है इस आध्यात्मिक जगत से आकर इस भौतिक जगत के हर जीवों को भगवान की ओर लेके जाने के लिए। लेकिन जैसे सबसे पहले श्रील प्रभुपाद होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वही इटर्नल रिलेशन के संबंध से पहले ही कह देते हैं कि आप जो है पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो। जो भौतिक व्यक्ति के जो शरीर को जो देखते हैं वो इस रिलेशन को समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो इटर्नल रिलेशन है गुरु एंड शिष्य का, जो भगवान के इटर्नल पार्षद है, वह के बेस पर उन्होंने तुरंत कहा कि आप आए हैं इस जगत का उद्धार करने के लिए, कृपया आप पाश्चात्य देश में करिए। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि कई बार वैष्णवों के जीवन में यही जो हार्द जो है कि परमात्मा का जो स्वरूप जो है जो गुरु के रूप में जो आते हैं, और कई बार ऐसा रिलेशनशिप में ऐसे आदान प्रदान होता है जो हमें समझना मुश्किल हो जाता है। कई साल पहले हिज ग्रेस हर्ष गोविंद प्रभु करके मीरा रोड में श्री श्री राधा गिरिधारी मंदिर से एक बहुत सुंदर एक वैष्णव है, सो उन्होंने कुछ 100 भगवद्गीता उन्होंने स्पॉन्सर की थी। वे बिल्डर थे और पहली बार वो मंदिर में आए थे, और क्योंकि उन्होंने 100 भगवद्गीता स्पॉन्सर की थी तो उनको बुलाया गया मंदिर में। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वहाँ पर आए थे, सबको फैसिलिटेट करते थे, और तभी जब उनका जब नाम आया तो गोपाल कृष्ण महाराज ने उन्हें फैसिलिटेट किया क्योंकि 100 भगवद्गीता स्पॉन्सर की, और फिर उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। सो कहा तभी तो हमारा जो मंदिर जो है राधा गिरिधारी मंदिर बहुत ही छोटा था, ग्राउंड फ्लोर में था, कई भक्तों ने देखा हुआ था, छोटा सा एक जगह में थी। तब हर्ष गोविंद प्रभु का नाम उनका तब दूसरा था, तो उन्होंने कहा महाराज मैं बिल्डर हूँ। ओ आप बिल्डर हैं, तो आप क्यों नहीं राधा गिरिधारी मंदिर बड़ा मंदिर का निर्माण क्यों नहीं करते। अब ये कितने साल पहले की बात है, अभी तो ये व्यक्ति मंदिर में आज पहली बार आई है, उसने सिर्फ 100 भगवद्गीता उसने स्पॉन्सर की है और सीधा उनको जो है लाइफ टाइम का इंस्ट्रक्शन वहाँ मिल गया, और अभी तक तो उनको पता भी नहीं, वो बोल रहे थे कि मुझे पता भी नहीं कि मंदिर का मतलब क्या है, हा? और फिर कितने साल निकल गए और आज ये जो सुंदर अप्रतिम मंदिर, जो राधा गिरधारी का जो मंदिर जो है, आज वही भक्त के द्वारा, हर्ष गोविंद प्रभु के द्वारा बनाया गया। तो यह जो है ये एक गुरु और शिष्य का ये जो इटर्नल जो रिलेशनशिप है उसका ये अनेकों अनेकों उदाहरण है ऐसे, जहाँ पर जो परमात्मा के रूप में गुरुदेव जो आते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो अनेकों अनेक भक्तों के वापस भगवत धाम जाने का जो है उसमें जो मदद रूप हो जाते हैं। कई साल पहले भक्त लोग थोड़े डॉक्टर्स थे और साथ में मिलकर कुछ कर रहे थे, एक इच्छा थी कि कुछ समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो भक्त लोग गए हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के पास और पूछा, महाराज हमारे माता पिता ने हमारे लिए अलग अलग अस्पताल में अलग अलग जगह पर बंदोबस्त किया है, हमारी खुद की मेडिकल प्रैक्टिस के लिए द्वारकाधीश प्रभु के पिताजी ने कुछ सोचा था भरूच में, माधवानंद के माता पिता ने कुछ सोचा था पालघर में, मेरे माता पिता ने कुछ सोचा था नाला सुपारे में। तो हम सब अपनी ओर से कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, सपने में भी ख्याल नहीं था कि आगे क्या आने होने वाला है। और एक दिन रविवार की सवेरे थी, अभी भी मुझे याद है, तभी जहाँ पर अब भी हम लोग स्वीट्स बनाते हैं वहाँ पर पहले छप्पर नहीं थी, खुला था, आसमान खुला था, सवेरे का मॉर्निंग का वक्त था, सूरज सूर्योदय हुआ था, पंछी सुंदर चकचकाहट कर रहे थे। और तभी महाराज जी से पूछा गया कि महाराज हमने, हमारे माता पिता ने इस प्रकार से मेडिकल फैसिलिटी के लिए किया है, क्या किया जाए। और महाराज तब भोलास क्लासेस के वो बेंच थे, बेंच पे बैठे थे, फिर महाराज ने बहुत ध्यान से देखकर कहा कि आप सभी लोग अपने अपने तरीके से बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप लोग साथ में मिलकर भगवान के लिए कुछ करने की कोशिश करोगे तो एक ऐसी चीज का निर्माण होगा जो हमेशा के लिए इतिहास में उसका नाम रहेगा। और अभी भी हमें याद है ये महाराज का ये इंस्ट्रक्शन, 22 साल की उम्र थी, तो जैसे हृदय में एक उजास सा छा गया, हम पंछी की तरह हम चल नहीं रहे थे, हम उड़ रहे थे। और आज जो देखते हैं, आज ये 1986 की बात है, कम से कम 30-35 साल के बाद में आज हम देखते हैं। सो महाराज का वो जो इंस्ट्रक्शंस है उसी के वजह से, खास करके महाराज के उस शब्दों के वजह से जो है भक्तिविदांत अस्पताल आज बना है। अभी हमारा पीछे नया बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर से मैं देखता हूँ कि कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा एक बिल्डिंग होगा, अभी ये इतना पीछे 10 माले का दूसरा बिल्डिंग हो रहा है, 13 अलग अलग प्रकार के सेंटर्स हो रहे हैं। तो ये जो है परमात्मा के जो रिप्रेजेंटेटिव जो है, ये गुरु के रूप में जब आते हैं, जब उनके इंस्ट्रक्शंस को हम जब फॉलो करते हैं, तब हम अपने आप को, हमारी मन और हमारी जो इंद्रियां हैं उससे भोग पाने की जो हमारी जो आसक्ति है उससे हम दूर होते हैं। और हम जैसे प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद इस पर्पोर्ट में लिखते हैं, आत्मा और परमात्मा के साथ का कनेक्शन और पर्पस, यही जो पर्पस जो है ये सबसे पहला मेरा हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज से इंटरेक्शन हुआ था, वो था हिज ग्रेस द्वारकाधीश प्रभु के घर पे, पहली बार, ये 86 के आजू बाजू की बात है। और इसके पहले मैं महाराज से देखा था, उनके दर्शन किए थे, उनके लेक्चर सुने, लेकिन सबसे पहले मैं द्वारकाधीश प्रभु ने बोला कि महाराज आ रहे हैं घर पे तो आप भी आ जाओ। सो द्वारकाधीश प्रभु के माता पिता प्रसाद बना रहे थे, द्वारकाधीश प्रभु को प्रसाद की तैयारी कर रहे थे और तब मैं रूम में महाराज के साथ अकेला बैठा था और महाराज ने आंख देखकर बिना कोई ऐसे हमारी बातचीत के पहले बीच बीच बगैर महाराज ने कहा कि गिरिराज प्रभु, बड़े बड़े महालय, बड़े बड़े मंदिर समय के बहाव में बह जाते हैं, बड़े बड़े राजमहल समय के बहाव में बह जाते हैं, लेकिन इस मंदिर के निर्माण में जो सेवा भाव और जो सहयोग जो वापरा जाता है, वह सेवा भाव और वह सहयोग हमेशा के लिए, इटर्नलिटी के लिए वह मौजूद रहता है। तो ये बहुत महत्व का इंस्ट्रक्शंस है कि हम सभी लोग यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं जीविका, लेकिन यहाँ पर जो प्रेम सहयोग सेवा भाव जो है भक्तों के बीच में, यह जो है वो हमेशा के लिए रहता है। और यही परमात्मा के रूप में परमात्मा का ये इच्छा रहता है कि कभी ये जीव जो है ये मेरी ओर आ जाए। और भगवान की कई बार कृपा होती है कि भक्त, हर एक भक्त के जीवन में ये सच्चाई है कि हमारा कुछ और सोचना था और गुरु परंपरा की कृपा से कुछ और हमारे जीवन में हो जाता है। मुझे अभी भी याद है जब मुझे फर्स्ट MBBS में मुझे एडमिशन मिला था, तब तो लाइफ बहुत ही इजी थी, आज के जैसे NET नहीं था, कुछ एग्ज़ाम्स CET एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ नहीं थी, जाओ एप्लीकेशन फॉर्म फ्री में मिलता था, वो भर के आप लेके आओ। आज तो एक एक एप्लीकेशन फॉर्म की कीमत 4-4, 5-5 हज़ार रुपया होती है। हाँ, तभी 3-4 में एप्लीकेशन खुद लेके आया, एक मेरे लिए, 2-3 दोस्तों के लिए, एक एक्स्ट्रा अगर मिस्टेक हो जाए तो इस प्रकार से मैं एप्लीकेशन भर दिया। और जब मुझे एडमिशन मिला तो अभी भी मुझे याद है, हमारे जो डीन थे, डीन के जो PA थे मिस्टर खान, वो मिस्टर खान मेरे पास आए और कहे कि हाँ गिरीश राठौड़, आपको मिला है सायन हॉस्पिटल। मैं जस्ट विदाउट एनी थॉट मैंने कहा सायन हॉस्पिटल सेंट्रल रेलवे में है, मैं रहता हूँ बोरीवली में, कहाँ मैं सायन जाऊँगा, ये बॉम्बे सेंट्रल नायर हॉस्पिटल बाजू में मिल जाए तो अच्छा है। तो मैंने कहा सायन कहाँ दे रहे हो भैया, ये नायर हॉस्पिटल दे दो। और उसके हृदय में क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने मेरी ओर देखा, थोड़े से बैठे छोटे कद के थे, स्थूल शरीर था, मेरे बैच के कई लोग जानते होंगे नायर हॉस्पिटल से, खान जी को हर काम के लिए उनके पास जाना पड़ता था। तो उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा ठीक है नायर हॉस्पिटल ले लो, और मैं आ गया, नायर हॉस्पिटल मिल गया। और नायर हॉस्पिटल में जब आया, देखिए परमात्मा कैसे अरेंजमेंट करते हैं, जैसे हमारे सबके जीवन में अरेंजमेंट होती है, एक टर्निंग पॉइंट। और हमारा नाम था जी, और हमारे आगे डी के बाद में ई और एफ में कोई था नहीं, ई नाम का जनरली कोई था नहीं, एफ नाम का कोई ना था, डी नाम का जो व्यक्ति था वो था धवल, हाँ धवल दलाल, और उसके बाद में मेरा नंबर था गिरीश राठौड़। वो जो डी जो थे, हाँ धवल के पिताजी, एक दिन उसे इस्कॉन मंदिर में लाइफ मेंबर हुए तो इस्कॉन मंदिर में लेके गए, नेक्स्ट संडे वो मुझे लेके गए, और वही धवल बाद में द्वारकाधीश प्रभु बने, और अभी भी हम लोग साथ में। तो वो जो चेंज जो है, वो जो परमात्मा का डायरेक्ट इंटरवेंशन जो था, कि तभी मुझे, मेरा कोई ये नहीं था कि मुझे द्वारकाधीश प्रभु मिलेंगे, लेकिन एक था कि भौतिक तरीके से थोड़ी सुविधा हो जाए, लेकिन अपना सोचना एक और है और परमात्मा का, गुरु महाराज का सोचना कुछ और होता है। हमारी इच्छा थी कि एक छोटा सा नर्सिंग होम हम जो है हम बना लेंगे बोईसर में, पूरे बंबई में हमने शोधा, हर जगह ढूंढी, बांद्रा से लेकर, मेरा एक वेस्पा स्कूटर हुआ करता था, उस पर बैठकर, बड़ा वेस्पा आपको पता होगा, बड़े टायर उसके होते थे, सेफ रहता था, तो उसके ऊपर बैठ के हम लोग जगह 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 ढूंढते थे कहाँ हम लोग नर्सिंग होम खोले। हमारा, मेरा, द्वारकाधीश प्रभु, माधवान प्रभु, विश्वरूप का एक सपना था कि एक खोलेंगे एक छोटा सा नर्सिंग होम, 20-25 खटिए का, भक्ति करेंगे और आनंद से जिएंगे, और हमने नक्की किया कहीं पर भी नहीं मिला तो बोईसर में सोचा, हाँ बोईसर अच्छी जगह है, बोईसर में हम लेते हैं। और खुश होते हम लोग, 25 बटखट्टिए का नर्सिंग होम, रेडी नर्सिंग होम हमको मिल रहा था, उसके मालिक कहीं पर गोवा शिफ्ट हो रहे थे, उतने ही 25 बेड का एक और बैंक का खाली जगह था पहले माले पे, वो भी मिल रहा था हमको, स्टेशन के बाजू में ही था, बाजू में एसटी स्टैंड था, वहाँ पर 160 गांव की सभी एसटियाँ वहाँ पर आती है, तो अच्छा काम चलेगा, पेशेंट बहुत आएंगे, सब तरीके से नया सिटी था बोईसर, एटॉमिक सेंटर था, तो एजुकेटेड लोग भी आएंगे, तो बहुत अच्छा, हमने हमारी ओर से पूरा प्लान बना लिया, यहाँ तक कि हमने एग्रीमेंट पेपर भी बना लिया, हाँ कि अभी खाली साइन ही करने का है। फिर गुरु महाराज को लेके गए दिखाने के लिए, महाराज वहाँ से गोपीनाथ से वहाँ तक आए, देखा पूरा जगह, कुछ बोले नहीं, और हम उत्साह से बताते थे महाराज यहाँ पर माल प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पर हम अच्छी तरह से शुद्ध प्रैक्टिस करेंगे, भक्ति करेंगे, 50 खटिए का नर्सिंग होम है, हम सब डॉक्टर्स हैं, अच्छी तरह से हमारी प्रैक्टिस चलेगी। फिर महाराज ने सबका ओपिनियन लिया एक के बाद एक के बाद एक, और फिर देखो हम सोचते हैं भौतिक तरीके से, मन से, शरीर से, बाहरी तरीके से, लेकिन गुरु महाराज जो परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव है वो देखते हैं यह आत्मा को कैसे भगवान के नजदीक लेके आए, और यही पर्पज है परमात्मा आत्मा और उसी का बाहरी जो स्वरूप आया था गुरु महाराज का। और उसी के भांति उन्होंने कहा कि आप लोग मेडिकल प्रैक्टिस ऐसे भी बहुत हेवी होती है, आज भी हम जानते हैं कि आज भी एट द एज ऑफ 61 ऑल्सो प्रैक्टिस बहुत बहुत, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रैक्टिस, हमेशा हर मेडिकल डॉक्टर के जीवन का ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रैक्टिस बढ़ती है, जितने सफ़ेद बाल उतने पेशेंट ज़्यादा। तो महाराज ने कहा कि वैसे भी आपकी मेडिकल प्रैक्टिस बहुत बिजी रहते हैं, तो आप लोग 3 घंटा राधा गोपीनाथ की दूरी से आप लोग अगर मेडिकल प्रैक्टिस करोगे तो आपके आध्यात्मिक जीवन का क्या होगा, और हमने ये सोचा ही नहीं था, हमने खाली बाहरी तरीके से सोचा था, निर्विवेशवादी, कई बार भक्ति में रहकर भी हम जो है डिसकनेक्टेड रहते हैं रियलिटी से कि भक्ति और सेवा ये जो सच्चाई जो है उससे भक्ति में रहकर भी हम डिसकनेक्टेड रहते हैं, और ये उदाहरण था कि हम लोग डिसकनेक्टेड थे, और फिर गुरु का जो है वह रोल होता है कि वो डिसकनेक्टेड मानसिकता को रिकनेक्ट करते हैं, और उन्होंने तुरंत कहा कि इतनी दूरी पे अगर आप लोग 3 घंटा आना 3 घंटा गोपीनाथ से जाना तो आप लोगों की भक्ति का क्या होगा। और तब माधवानंद प्रभु और हम लोग दोनों ट्रेन से आ रहे थे, हमारा दोनों का हृदय टूट चुका था, कितनी मेहनत की थी, कितनी जगह देखी थी, बंबई में एक जगह ऐसी नहीं दिखी कि जहाँ पर मेडिकल नर्सिंग होम कहाँ डाल सकें, और हमने ये फाइनल किया था, लेकिन गुरु महाराज का आदेश है, हमने दोनों ने, हमने सभी डॉक्टर्स ने वो आदेश को पालन किया, तो आज हाँ। और महाराज ने ये भी कहा ऐसा कुछ करो जो 1.5 घंटे की रेडियस में हो, दूरी में हो, तो 1.5 घंटे की रेडियस में हमने फिर कभी सोचा नहीं था। लेकिन एक बात है कि जब हम गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को, जब डिसाइपल अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को जब फॉलो करने की कोशिश करता है, ये सच्चाई है कि कभी कभी लगता, एवरी टाइम, कभी कभी नहीं, एवरी टाइम लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन भगवान श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी ऐसी अरेंजमेंट करते हैं कि जो इम्पॉसिबल जो लगता है वही सबसे नैसर्गिक नेचुरल चीज होती है। और हमको एक छोटा सा नर्सिंग होम मिला, वो चालू किया, और बाद में इतिहास सब जानते हैं कि कैसे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल हुआ। तो यही है कि सेवा, यहाँ पर शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव का सेवा भाव होता है, निर्विशेषवादी का भौतिकतावादी उपभोग भाव होता है, और जब हम स्ट्रगलिंग साधक जब रहते हैं, हम स्ट्रगल करते हुए साधक होते हैं, तो हम इस दोनों के बीच में, सेवा और उपभोगता के बीच में हम हमेशा हम रहते हैं, और तभी जो हमारा कनेक्शन जो होता है एक आत्मा के रूप परमात्मा के साथ और हमारे गुरु के साथ बाहरी, जब हमारा वो जो कनेक्शन रहता है, तो वह कनेक्शन हमें हमारे आत्मिक लेवल पर हमें ले जाता है, हमारे इटर्नल लेवल पर ले जाता है। और जितनी हमारी मानसिकता भक्ति में रहकर भी मेरी इंटेलिजेंस मेरी बुद्धि से मैं यह करूँगा, उतना हम जो है हमारा कनेक्शन डिसकनेक्ट रहता है भगवान के साथ। और जितना हम हमारी बुद्धि हमारी इंटेलिजेंस हम गुरु और सीनियर्स के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें कदाचित हमें वह रुचिपूर्वक नहीं भी होता है, ये हमारे लिए उतना रुचिपूर्वक नहीं था कि बोईसर छोड़ के हम यहाँ पर आए, लेकिन जब जब हम हमारी रुचि को छोड़कर गुरु परंपरा की रुचि और वैष्णव की रुचि को हम शरणागत हम होते हैं, तब उस सेवा के द्वारा उस प्रसंग के द्वारा हमारा जो है कनेक्टिविटी जो है श्री गुरु के द्वारा भगवान के साथ जो है जो हमारा कनेक्टिविटी है वह बढ़ जाता है। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कोई प्रश्न कोई टिप्पणी हो तो कृपया कहिएगा। जय। हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।